नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पश्चिम बंगाल में प्रचार आज रात समाप्त होगा। 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की शेष 50 सीटों का प्रचार कल शाम समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार गरीबों, किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए वचनबद्ध। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के सत्ता में आने पर किसानों की कर्ज माफी का भरोसा दिलाया। जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिलों में अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी ढेर और सेना का 1 जवान शहीद। और नेपाल ने भारतीय कंपनियों से आपसी हित के लिए देश में और निवेश करने का आग्रह किया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पश्चिम बंगाल में 9 सीटों के लिए प्रचार आज रात 10 बजे समाप्त हो जाएगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य में प्रचार कल शाम समाप्त होना था, लेकिन मंगलवार को कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसा की घटनाओं के बाद निर्वाचन आयोग ने प्रचार की अवधि में कटौती कर दी है। 6 राज्यों की बाकी 50 सीटों के लिए प्रचार कल शाम समाप्त होगा। सभी 59 सीटों के लिए रविवार को मतदान होगा। विभिन्न पार्टियों के शीर्ष नेता मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर की प्रतिमा को खंडित करने में शामिल थे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल की दक्षिणी 24 परगना जिले में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बंगाल की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को तबाह कर रही है और पिछले कुछ दिनों में राज्य में हो रही घटनाओं का पूरा देश साक्षी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं। मोदी ने उन पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
चुनाव के दौरान ही यहां बीजेपी के अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, अनेक कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। लोकतंत्र में इस प्रकार के आचरण के लिए कोई जगह नहीं होती है, लेकिन दीदी, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है।
उधर ममता बनर्जी ने मंडी बाजार में एक रैली में आरोप लगाया कि राज्य की विरासत को नष्ट करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं। पश्चिम बंगाल में प्रचार के अंतिम दिन कई प्रमुख नेताओं ने जनसभाओं को संबोधित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पश्चिम बंगाल में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने आज बड़े पैमाने पर रैलियां और रोड शो किए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 रैलियों को संबोधित करने के अलावा दक्षिण कोलकाता में एक रोड शो में हिस्सा लिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने बारानगर में रोड शो में भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा ने दक्षिण कोलकाता में चुनावी रैली को संबोधित किया। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, चंदौली और मऊ में रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने आतंकवाद और नक्सलवाद को जबरदस्त टक्कर दी है और यह सुनिश्चित किया गया है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मिले। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों, किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में एक रैली में कहा कि केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से 26 लाख लोगों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने देश के 50 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार का प्रयास किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे और न्याय योजना लागू की जाएगी। बिहार के पटना में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
न्याय योजना लाखों युवाओं को रोजगार दिलवाएगी, फैक्ट्रियां चालू होंगी, दुकानें शुरू होंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक साल के अंदर 22 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। 10 लाख युवाओं को हिंदुस्तान की सरकार पंचायतों में रोजगार दे देगी, मेरी गारंटी है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में कहा कि भाजपा सरकार पर फिर से भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अपने वायदे को पूरा करने में नाकाम रही है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में संयुक्त रैली की। मायावती ने कहा कि गंगा नदी की ठीक से सफाई नहीं हो पाई है और विकास के नाम पर लोगों को विस्थापित किया गया है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई।
कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से कार्य किया होता तो फिर हमें बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो पूरे देश की जनता का हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि हो रहा है ये भी होता हुआ नजर नहीं आता।
अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने काशी को जापान के क्योटो शहर जैसा बनाने का वायदा किया था लेकिन शहर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। अंतिम चरण में रविवार को उत्तर प्रदेश और पंजाब के 13-13, पश्चिम बंगाल के 9, बिहार और मध्य प्रदेश के 8-8 और हिमाचल प्रदेश के सभी 4, झारखंड के 3 और चंडीगढ़ के एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा। मतगणना इस महीने की 23 तारीख को होगी। उत्तर प्रदेश में प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट।
पूर्वांचल में सूरज की तपिश के साथ ही नेताओं की रैलियां और रोड शो भी सियासी तापमान बढ़ा रहे हैं। पारा भले ही 45 तक पहुंच रहा हो लेकिन लोगों की भारी भीड़ उसी उत्साह के साथ अपने प्रिय नेताओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में रैलियों में पहुंच रही है। पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म होने में अब महज 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के साथ ही वर्तमान और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी किस्मत का फैसला होना है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चंदौली।
पंजाब में प्रचार जोर शोर से चल रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पोजेवाल के पास आनंदपुर साहिब से अकाली बीजेपी उम्मीदवार प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा के पक्ष में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हुआ और महंगाई भी काबू में रही। उधर आज गुरदासपुर से उम्मीदवार सन्नी देओल ने बटाला में कई चुनाव रैलियों में कहा कि वो बदले की राजनीति करने नहीं आए। उनके बारे कांग्रेस के बयानों का जवाब देने के बजाय वो युवाओं को रोजगार दिलाने और क्षेत्र के विकास के बारे में सोचना पसंद करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज जीरकपुर में एक चुनाव रैली को संबोधित किया और अपनी पत्नी व पटियाला से उम्मीदवार परनीत कौर के लिए वोट मांगे। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़का रही है। नई दिल्ली में पार्टी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए आयोग को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। कांग्रेस, तेलुगुदेशम पार्टी और आम आदमी पार्टी के एक शिष्टमंडल ने आज पश्चिम बंगाल में प्रचार 20 घंटे पहले समाप्त किए जाने के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्य में हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है।
ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
अरे लाला जी, आप यहाँ? डॉक्टर दीदी आई है, चलिए वहाँ।
अरे बेटी, पिछली बार पूरी जांच करवाई थी, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई थी।
लाला जी, जो सोता है वो खोता है, कहते हैं जांच इलाज से बेहतर होता है।
इसी तरह हर मतदाता के लिए है जरूरी वोटर लिस्ट में कर ले अपने नाम की जांच पूरी, तो समय रहते अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना भूलना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना।
Check your name in the voter list on nbsp.in or call voter helpline 1950. Bharat Nirvachan Aayog dwara jan hit mein jari.
Ye Akashwani hai. जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिले में अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी ढेर हो गए और सेना का एक जवान शहीद हो गया। शोपियां के हेंडियो इलाके में आज शाम सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए। इस कार्रवाई में सेना का एक जवान जख्मी हुआ है। इससे पहले आज तड़के पुलवामा जिले के डालीपोरा गांव में एक मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी नागरिक समेत जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया और 3 अन्य जख्मी हो गए। एक नागरिक के मारे जाने और एक अन्य के घायल होने की भी खबर है। असम पुलिस ने कहा है कि कल रात गुवाहाटी में हुए बम विस्फोट मामले में एक उल्फा उग्रवादी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने गुवाहाटी में बताया कि मामले में कई और लोग शामिल हैं और उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कहा है कि बोफोर्स घोटाले में हाल के खुलासों के बाद इस मामले की जांच जारी रहेगी। मिशेल हर्षमैन द्वारा जारी किए गए कुछ खुलासों के मद्देनजर सीबीआई ने बोफोर्स मामले में आगे जांच के लिए निचली अदालत से अनुमति मांगी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा।
कुछ तो तरीका होगा।
तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। मैं हूँ आधार के साथ।
मेरा आधार मेरी पहचान।
समाचार संध्या में आपका स्वागत है। नेपाल ने भारतीय कंपनियों से देश में और ज्यादा निवेश करने का आग्रह किया है। आज काठमांडू में 2 दिन के भारत नेपाल फ्रेंचाइजी निवेश प्रदर्शनी और सम्मेलन में वित्त मंत्री युवराज खतिवाड़ा ने कहा कि इससे कारोबार के विकास के लिए बेहतरीन माहौल बनेगा। उन्होंने कहा कि नेपाल में घरेलू और विदेशी निवेश की काफी गुंजाइश है। भारत और ईरान के बीच दूतावास संबंधी संयुक्त समिति की 11वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में हुई। इसमें असैन्य और वाणिज्यिक मुद्दों के बारे में परस्पर कानूनी सहायता के समझौते को जल्द पूर्ण करने और एक दूसरे के देश के नागरिकों के लिए ई वीजा की अवधि बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में वीजा तथा दूतावास से संबंधित मुद्दों पर जारी सहयोग की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अलावा दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क तथा मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 279 अंक बढ़कर 37,393 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 100 अंक बढ़कर 11,257 पर बंद हुआ। रुपए में 31 पैसे का उछाल आया और एक डॉलर की कीमत 70.03 रुपए दर्ज हुई।
अमेरिका से निष्कासित 52 पाकिस्तानी प्रवासी विशेष चार्टर्ड विमान से आज इस्लामाबाद पहुंचे। मंगलवार को अमेरिका ने अवैध तरीके से वहां रह रहे 70 पाकिस्तानी नागरिकों को स्वदेश वापस भेजने का आदेश दिया था। ट्रंप प्रशासन ने हाल में वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रह रहे विदेशियों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की थी। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने आज नई दिल्ली में लोकपाल वेबसाइट www.lokpal.gov.in का शुभारंभ किया। इस वेबसाइट से लोकपाल की कार्यप्रणाली और कामकाज के बारे में मूल जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। नियम और विनियमन अधिसूचित करने की प्रक्रिया तैयार की जा रही है। शिकायतें प्राप्त करने का प्रारूप भी तैयार किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पश्चिम बंगाल में प्रचार आज रात समाप्त होगा। 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की शेष 50 सीटों पर प्रचार कल शाम समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एनडीए सरकार गरीबों, किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए वचनबद्ध। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के सत्ता में आने पर किसानों की कर्ज माफी का भरोसा दिलाया। जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिलों में अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी ढेर और सेना का एक जवान शहीद। और नेपाल ने भारतीय कंपनियों से आपसी हित के लिए देश में और निवेश करने का आग्रह किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।